जय राधा माधवा कुंज विहारे। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे। यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज विहारे। जय राधा माधव कुंज जय गौरनताय 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 जय गौरनताय। जय जय प्रभुपाद 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 वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जया मुदीरये। नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवते न ईर्ष्यके। हरे कृष्ण मंत्राश्मद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 11। अध्याय के नाम है भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाएं। श्लोकमांग 18। धूलि धूसरित अंगत्वं पुत्र मजनम आवह जन्म वृक्षम आद्य भवति विप्रेभ्यः गाः शुचि। धूलिधूसरितांगस्त्वं धूलिधूसरितांगस्त्वं पुत्रमजनमावह पुत्रमजनमावह जन्मक्षम तेद्य भवति जन्मक्षम तेद्य भवति विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः। धूलिधूसरित अंगहस्त्वम् तुम्हारा पूरा शरीर धूल से ढका हुआ है। पुत्र हे मेरे बेटे, मजनम आवह, आओ स्नान करो तथा अपनी सफाई करो। जन्म रुक्षम, जन्म का शुभ नक्षत्र ते तुम्हारा, आद्य आज भवती है। विप्रेभ्यः शुद्ध ब्राह्मणों को देही दान में दो। गाह गौएं सुचि ही शुद्ध होकर। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। माता यशोदा ने आगे भी कृष्ण से कहा, हे पुत्र, दिन भर खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल तथा रेत से ढक गया है, अतः वापस आ जाओ, स्नान करो और अपनी सफाई करो। आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से चांद मेल खा रहा है, अतः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को गौओं का दान करो। तात्पर्य, वैदिक संस्कृति की यही एक प्रथा है कि जब भी कोई शुभ उत्सव होता है तो ब्राह्मणों को दान में बहुमूल्य गौएं दी जाती है। इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से प्रार्थना की कि खेलने में अधिक मन न लगाकर अब घर आकर दान देने में मन लगाए। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में सलाह दी गई है, यज्ञ दान तथा तपस्या का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बढ़े चढ़े व्यक्ति को भी ये तीन कर्म नहीं छोड़ने चाहिए और अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए इन तीनों यज्ञ दान या तप में से एक या तीनों करना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय च नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यं रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानुमान परम भागवता नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो क्रमानुसार हम लोग श्रीमद् भागवतम के दसवें स्कंद के ऊपर नित्य श्रवण करते आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी के बाल चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। बहुत सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में होता है। हम लोग नियमित अनुसार श्रवण करते आ रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने यह सुना कि किस प्रकार हमारे ठाकुर जी ने फलवाली के साथ अपना कर्तव्य निभाई, अपने व्यवहार निभाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम परमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यही करुणामय कृष्ण आगे को चल करके कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, उस युद्ध भूमि पर, उस पवित्र धर्म भूमि में खड़े होकर के उपदेश दिया। भगवान को इस बात का अनुभव था, स्मरण था। भगवान इसी बात को कहते हैं, अर्जुन ये संसार में कोई भी प्राणी जो जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरा भजन करता है, मैं उसे वैसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं। कोई मुझे पुत्र के रूप में चाहती है, कोई गृहस्थ हमें पुत्र के रूप में पाना चाहता है, तो ठाकुर जी कहते हैं हम उनके पुत्र बन जाते हैं। यही नंद महाराज और यशोदा रानी, इन लोगों ने बहुत वर्ष पर्यंत तपस्या किया, हम सभी श्रवण करते हैं। कई हजार दिव्य वर्ष पर्यंत तपस्या करने के उपरांत ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुआ, दर्शन हुआ और उन्होंने भगवान से पुत्र की कामना की। कहा कि प्रभु आप जैसे पुत्र हमें प्राप्त हुए। हमारे ठाकुर जी ने कहा हम वानीन वान है, इस संसार में हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, हम ही तो एक लौता है। कन्हैया ने थोड़े देर के लिए सोचे, इसलिए प्राणनाथ सरकार ने उन्होंने स्वयं ही यशोदा रानी के पुत्र बनना स्वीकार कर लिए कि हम ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, क्योंकि तुम हमारे जैसे पुत्र पाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। तो आज नंद महाराज के आंगन में वो परम ब्रह्म सच्चिदानंद घनमय स्वरूप बाल कृष्ण लाल खेल रहे हैं, अपने दिव्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। हम लोग क्रम से सुनते आ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। इससे पूर्व कल हमारा आदरणीय, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे वंदनीय आदियोग प्रभु जी ने बड़ा सुंदर भावों का वर्णन किए। हम सभी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसी बात थी कल के श्लोकों में, जरा सा झलक सा सुनिए। खाली अर्थ हम आपको सुनाते हैं, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, कल आपनों ने सुना है। प्रतीक्षते त्वाम दार्शः भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः, एहि वयोः प्रियं देहि स्वगृहात् गृहान् यात बालकाः। माता यशोदा, भगवान कृष्ण की बहुत छवि है, आप सभी लोग ध्यान में लीजिए, तभी तो कथा सुनने में आनंद आएगा। भगवान इस समय क्या कर रहे हैं, नंद भवन के बाहर खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ। दाऊ जी और लाला जी, बालकृष्ण लाल जी, अपने स्वमित्रों के साथ, लगभग 450 मित्र है ठाकुर जी के, उन बालकों के साथ भगवान खेल रहे हैं। अलग अलग प्रकार के खेल होता है, कबड्डी होता है, भेड़ बकरी वाले खेल होता है, छिपकली खेल होता है, ये क्रिकेट नहीं है, ज्वाज होती है, वह सब दिव्य खेल है ठाकुर जी के। तो भगवान ने ऐसे खेल खेल रहे थे और खेल में ठाकुर जी इतने मग्न थे, स्वयं माता यशोदा को रोहिणी जी ने निवेदन किया, देवी अब जाकर कन्हैया को बुला लाओ, बहुत देर हो गए, बहुत ज्यादा देर हो गई है, ठाकुर जी को बुला लाओ, बालकृष्ण को बुला लाओ। तो माता यशोदा जाती है और माँ यशोदा आकर के कृष्ण को बुलाती हुई कहती है, कृष्णम कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिवः, इसे पूर्वी और भाव को व्यक्त करती है। परंतु माता यशोदा जैसे बालकृष्ण को खेलते हुए अवस्था में देख रही है, माता यशोदा के पयोधर से दूध बहने लग जाती है। हालांकि माता यशोदा की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, परंतु यह वात्सल्य भाव के स्वरूप हुआ था, वात्सल्य भाव के कारण माता यशोदा को यह भाव आ रही थी और उनके पयोधर से दूध टपकने लगे। और ऐसे कहती है माँ यशोदा, कहती है हे कृष्ण तात एहि आयह स्तनम पिबह, आ जाओ हमारे स्तन पान करो, लाला आ जाओ, बहुत देर हो गए वो खेलते खेलते, अब चलो आ जाओ, भगवान अब खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी को ऐसे बुला रहे हैं, अलम बिहारी ही शुत शांत क्रीड़ा श्रांत हो अति पुत्र कह, हे लाला तुम बहुत देर से खेल रहे हो, बहुत ज्यादा समय हो गया है, बहुत ज्यादा देर हो गया है, अब खेल को शांत करो, यहीं बंद करो, अब चले आओ। तो भगवान सुनते नहीं है, इसे पूर्व भी बड़ा सुंदर भावों का वर्णन यहाँ पे संतों ने सुनाया है। तो ठाकुर जी सुनते नहीं है, क्योंकि भगवान को अपने बाल सखाओं के साथ इतना प्रीति था, प्रीतिम आवह, अपने मित्रों के प्रति उनकी इतनी स्नेह है, इतनी वात्सल्यता है, साक्ष्य भाव है, भगवान अपने मित्रों के साथ छोड़ करके मैया के पास जाना नहीं चाहते थे। परंतु माता को बड़ा चिंता होती थी कि सुबह से खाया पिया नहीं है, सवेरे एक बार खा करके आया था, भोजन पा करके आया था, अब पूरा दिन बीत गया है, माँ को तो चिंता होती है ना, बालक कभी कभार खेलकूद में लग जाते हैं, किसी को चिंता हो या न हो, मित्रों को चिंता हो या न हो, परंतु मैया को सबसे पहले ज्यादा चिंता होती है, मेरे बालक सुबह से खा करके गया है। यहाँ तक कि क्या कहा जाए, माता की स्नेह इतना प्रबल होता है, सभी जानते, सभी गृहस्थ इस बात का अनुभव किए हुए हैं कि माता की और पिता की कितनी स्नेह होती है, खासकर कि माँ की अपने संतानों के प्रति कैसी प्रेम होती है, कैसी स्नेह होती है। तो इस भाव का वर्णन करना कोई आवश्यक हम नहीं समझते, आप लोग हमसे विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, शिक्षित जन हैं, तो आप जानते हैं इस बात को कि कैसी प्रेम होती है माता के अंदर अपने बालकों के प्रति। तो माँ यशोदा यहाँ पे ठाकुर जी को ये कहते हैं, कह रही है प्रातरेव कृत आहारात भवान भुक्तुम अरहति, हे लाला इसे पहले, इसके बाद फिर दाऊ जी को बुलाते हैं, दाऊ जी को क्या कहते हैं, कत हे रामम आगत तात सु सा अनुज कुलनंदन, कहते हे राम, हे बलराम अब तुम आ जाओ कम से कम, क्योंकि बलराम भगवान कृष्ण को जब माता यशोदा ने बुलाई तब लाला जी ने दाऊ जी की ओर देखे कि दाऊ जी तो अभी खेल रहे हैं, हम काहे को जाएंगे, जब दाऊ जी खेल रहे हैं तो हम भी खेलेंगे। तो फिर माता यशोदा कहती है हे तात, हे बलराम, हे राम, कम से कम तुम पहले आ जाओ, तुम पहले आ जाओ, क्योंकि तुम कुलनंदन हो, तुम कुल के बड़े पुत्र हो। ऐसे बालकों को जो बुलाया जाता है बड़ा स्नेह से, बच्चों को ऐसे बुलाया जाता है, बच्चों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे ही हमारे ठाकुर जी, ये तो अति चंचल है महाराज, पल भर में कहाँ कहाँ नेत्र घुमा लेते थे, पल भर में ठाकुर जी कहाँ घुमाते थे, एक बार घर से निकल जाते थे बालकृष्ण लाल सवेरे, सायं को आने से पूर्व घर पर सैकड़ों कंप्लेन उलाहनाएं आ जाती थी ठाकुर जी के पास, इसके पूर्व के अध्याय में आप लोगों ने सुना, आठवीं सातवें अध्याय में, कि कैसे उलाहनाएं ठाकुर जी के पास, नंद महाराज के पास, यशोदा रानी के पास आया करते थे। तो तो इतने चंचल है बाल कृष्ण लाल। तो ये कहते हैं हे राम, आप तो बड़े पुत्र हो, आप तो अनुज हो, इसीलिए कम से कम आप चले आओ। कुलनंदन शब्द उपयोग करके यह सूचित करना चाहती है, कहती है माता यशोदा आप कुल के बड़े पुत्र हो और आप ज्ञानी हो, कृष्ण तो बालक है। यह बात भाव को प्रकट करती है, कृष्ण बालक है, वो हमारे बात नहीं सुनता है, परंतु तुम्हें हमारी बातों का आदर करना चाहिए। इसीलिए हे तात, तात्सु सा अनुज, आप कृष्ण के बड़े भ्राता हो, इसलिए चले आओ। क्यों चले आऊं? कहते प्रातरेव कृत आहाराद, सवेरे आप लोगों ने भोजन किया था। मैया यशोदा को चिंता हो रही है, आप लोगों ने सवेरे सवेरे भोजन करके घर से निकल गए थे, अब बहुत देर हो गया है, भवान भुक्तुम रहती, अब काफी देर हो चुका है, आप दोनों ने भोजन नहीं ग्रहण किया है, अब चले आओ। तब फिर कहती है माता यशोदा प्रतीक्षते त्वाम दर्श आह, इतना सुनने के बाद में भी हमारे ठाकुर जी और दाऊ जी दोनों ने नहीं आए मैया के पकड़ में। मैया के पास हो सकती नहीं थी, वो दौड़ करके कन्हैया को दौड़ा ले और उनके उनको पकड़ ले, यह शक्ति नहीं थी मैया के पास। मैया काफी मोटी थी, काफी भारी थी और बाल कृष्ण लाल छोटे से थे, लाला ये तो भागने में बहुत फुर्तीले थे, माता कहाँ इतने बड़े भारी शरीर को लेकर के दौड़ सकती है। परंतु अब ऐसे कहती है कि प्रतीक्षते त्वाम दर्श आह, कितना सुंदर शब्द उपयोग करती है माता यशोदा रानी, कहती है आप दोनों के प्रतीक्षा में तुम्हारे पिताजी बैठे हुए हैं, बाबा तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारे प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। भुक्ष मानो ब्रजाधिपः, ब्रज के राजा महाराज नंद अब आप दोनों के प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जब आएंगे भुक्ष मानो हूं, भोजन की इच्छा से बैठे हुए हैं, अब तक बाबा ने भोजन नहीं किया है। इतना सुनते ही कन्हैया खेलकूद छोड़ करके चले आते हैं, खेलकूद छोड़ करके मैया की गोद में चले आते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सब कुछ सहन हो सकता है, परंतु उनके भक्त को कोई दुख होए ये ठाकुर जी को सहन नहीं हो सकता। भगवान ने जैसे सुना प्रतीक्षते त्वाम दर्श आह, आप दोनों के प्रतीक्षा करते हुए भक्ष मानो ब्रजाधिपः, ब्रज के राजा महाराज नंद ने प्रतीक्षा किए हुए हैं, भोजन के थाली के पास बैठे हुए हैं, कब आप दोनों आओगे, आप दोनों के साथ वो भोजन ग्रहण करेंगे। इतना सुनते ही बाल कृष्ण लाल चले आते हैं। यह झांकी का वर्णन कृष्ण करणामृत में प्राप्त होता है। बाल कृष्ण लाल को कैसे ठाकुर जी के मैया यशोदा रानी बुलाती है और कैसे आते नंद महाराज के पास बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, यह समस्त बातों का कृष्ण करणामृत ग्रंथ में विलोमंगल ठाकुर जी बड़े सुंदर भाव से झांकी का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी जब आते हैं, अब जब आते हैं आकर के घर में बैठ जाते हैं, परंतु इससे पूर्व कुछ और बातें हैं जो आज के इन श्लोकों में है, यह सुनिए क्या भाव देते हैं। कहते हैं धूलिधुसरिता अंगस्त्वं पुत्रः मजन आवह, कहती है माता यशोदा हे पुत्र हे लाला, तुम्हारे शरीर खेलकूद में खेलते खेलते सुबह से धूल धूसरित हो चुका है। ठाकुर जी इतने ऐसे खेल में रम्य रहते थे अपने मित्रों के साथ, खेल में तो धूल धूसरित होना ही है, कभी कभार कुश्ती लड़ते थे, ठाकुर जी का किसी मित्र के साथ कुश्ती होता था और उस कुश्ती में बाल कृष्णलाल कभी कभार हार जाते थे और उनकी सखाएं उनके ऊपर चढ़ करके बैठ जाते थे, ऐसे कुश्ती होता था। धूल में ब्रज रज में हमारे ठाकुर जी ने खूब लेटा है महाराज, इसीलिए उस वृंदावन के महात्म्य में, वृंदावन महात्म्य में बड़ा सुंदर भाव का वर्णन करते प्रबोधानंद सरस्वती, जो प्रकाशानंद थे परंतु बाद में महाप्रभु के कलि पावन अवतार श्री गौर सुंदर भगवान के कृपा से जब वो प्रबोधानंद बनते हैं, बड़ा सुंदर भावों का वर्णन करते हैं वृंदावन संपू में, वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में वो कहते हैं, कहते हैं अत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुः आनंद सच्चित घनेता मुपेति, वृंदावन क्या चीज है सुनिए, जहां पे हमारे ठाकुर जी उस रज में गड़े हुए हैं और उस रज में वृंदावन में ऐसा कोई भी एक रत्ती भर का जगह नहीं है, कण भर का ऐसा स्थान नहीं है जहां हमारे बालकृष्ण लाल अपने मित्रों के साथ रमन न किया हो, प्रभु के चरण रज जहां पड़ा न हो, प्रभु के चरण कहीं पड़ा न हो, ऐसा कहीं भी एक स्थान नहीं आप दिखा सकते। वृंदावन इतनी पवित्र स्थान है, इसीलिए वृंदावन के महिमामृत के अंतर्गत यह प्रबोधानंद जी कहते यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुः, वृंदावन के सीमा में जैसे ही जीव प्रवेश करता है महाराज, यहाँ पे प्रविष्ट का शब्द प्रवेश होता है, जंतु का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े। वृंदावन में कौन प्रवेश कर रहा है, प्रबोधानंद जी अपने भाव का व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई भक्त की बात नहीं चल रही है, कोई मनुष्य का बात नहीं चल रहा है, कोई विद्वान पुरुष की बात नहीं कही जा रही है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुः, यहां तक कि कीड़े मकोड़े यदि वृंदावन में प्रविष्ट कर जाते हैं, वृंदावन की सीमा पर आ जाते हैं, तो क्या होता है, क्या प्राप्त होता है उन्हें, धन्यम वृंदावनम, धन्य है वह वृंदावन। कहते हैं आनंद सच्चित घनेताम उपैति, उन्हें सच्चित आनंदमय स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वृंदावन में आते ही सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त होता है, जो हमारे ठाकुर जी के स्वरूप है, ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है, भगवान के जैसे बन जाता है, इतनी करुणामय की कृपा है, धन्य हो वृंदावन। पद्म पुराण में व्यास जी भी वृंदावन के महात्मा का वर्णन करते हैं, कत धन्य वृंदावन भक्ति नृत्य यत्र चह, जहां भक्ति देवी नृत्य करती है वृंदावन में, वो वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नित्य नृत्य करती है। तो उस पवित्र स्थल पे ठाकुर जी ने नित्य विहार, वृंदावन ठाकुर जी के नित्य विहार स्थल है, आज भी प्रियाप्रियतम वहां पे नित्य विहार करते, रमन करते हैं, लीलाओं को संपन्न करते हैं, बहुत से संतों का भाव है, आज भी बड़े बड़े महापुरुष ठाकुर जी के दर्शन भी प्राप्त करते हैं वृंदावन में आज भी, इसलिए वृंदावन को मामूली न लिया जाए। और वृंदावन कौन प्राप्त करता है, जब यही वृंदा देवी की कृपा होने लगती है तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। वृंदावन में एक रात्रि निवास कौन करता है, जिसके ऊपर हमारी श्री जी की कृपा हो जाए, राधा रानी की कृपा हो जाए, वो वृंदावन में एक रात्रि रह सकता है, अन्यथा एक रात्रि भी निवास करना वृंदावन में मुश्किल है। लोग कहते हैं वृंदावन में रहना बहुत कठिन है, यह है वो है, हम तो इतना कठिन नहीं मानते हैं। वृंदावन में रहना कठिन नहीं है, यदि आपकी प्रेम है श्री जी से, आपकी प्रेम है ठाकुर जी से, शरणागति की भावना है, सेवा की भावना है, तब तो वृंदावन में राधा जी बुला करके ले जाती है। और वृंदावन में रहने का विधान भी बताया गया है शास्त्र में, जो वृंदावन में निवास करना चाहता है उसे कम से कम 6 महीने तक भगवान शंकर जी के माथे पर, गोपेश्वर महादेव जी के माथे पर नित्य जल चढ़ाना चाहिए। 6 महीने तक नित्य गिरिराज का परिक्रमा लगाएं और गिरिराज का परिक्रमा लगाने के उपरांत गोपेश्वर महादेव को नित्य सवेरे सवेरे जल का समर्पण करें। 6 महीना उसे ऐसे कम से कम करना पड़ेगा, जो रूप गोस्वामी पाद जी ने शिक्षा दिया है, सनातन गोस्वामी पाद ने अपने जीवन में स्वयं ही किया है, नित्य गिरिराज का परिक्रमा लगा करके आते थे और गोपेश्वर जी को जल चढ़ाते थे सनातन गोस्वामी पाद जी। अभाव यहाँ पर वर्णन किया जाता है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ, जिन्होंने गोपेश्वर महादेव के माथे पर जल नहीं चढ़ाया है, कथनचित यदि वो वृंदावन में रह भी जाता है, कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर उसे फिर से वहां से आना पड़ेगा, वृंदावन में रह नहीं सकता जब तक गोपेश्वर महादेव की कृपा न हो जाए। तो उस वृंदावन महात्म्य के विषय में क्या कहा जाए, वृंदावन तो प्रभु के घर ही है, गिरधारी के घर ही है, ठाकुर जी के घर है, वो कोई तीर्थ नहीं है, कोई पवित्र स्थल नहीं है, वो तो भगवान के निजी घर ही है। तो उस पवित्र स्थल पर भगवान ने बड़ा सुंदर मनोरम लीलाओं को संपन्न करते हुए विचरण करते हैं, खेलते हैं अपने मित्र के साथ। मैया यशोदा यहाँ पर कहती है धूलि धूसरिता अंगत्वम पुत्रः मजन आवह, हे मेरे पुत्र, हे लाला, हे दाऊ जी, अब तुम दोनों आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे शरीर धूल धूसरित हो चुका है, बहुत ज्यादा धूल से तुम नहा चुके हो। भगवान को बड़ा आनंद आता था, ब्रजरज जब अपने शरीर में लपेटते थे ठाकुर जी, बहुत आनंद आता था ठाकुर जी को। इससे पूर्व पिछले रविवार को हम लोगों ने एक चर्चा किए थे वाणी के एक बात पर, चाहे ब्रजरज हो, ब्रजरज का तो महिमा महाराज क्या कहना है, परंतु ब्रजरज हो या कहीं का भी रज हो, जब तक रज हमारे शरीर में नहीं लगता तब तक ये शरीर पवित्र नहीं होता। पूजा पाठ से पहले सर्वप्रथम शरीर पर नहाने के उपरांत मिट्टी का मिट्टी लगाना पड़ता है शरीर में। जब तक मिट्टी का सेवन और मिट्टी लगाता नहीं है तब तक शरीर पवित्र नहीं माना जाता। मिट्टी का स्पर्श करना अत्यधिक आवश्यक है कोई भी चीजों में। तो ठाकुर जी हमारे ब्रज रज में बिल्कुल धूल शरीर थे, उनके श्रीअंग, अब आप सोचिए श्याम वर्ण जिनका रूप कैसा है, श्याम वर्ण है, तमाल वृक्ष की तरह भगवान के शरीर है, श्याम रंग के है, ऐसे श्याम शरीर में जब धूल लगा होगा तो कैसे लग रहे होंगे ठाकुर जी, इतने से बाल कृष्ण लाल है तो कैसे लग रहे होंगे, कितने सुंदर लगे होंगे। तो ऐसे ठाकुर जी को जब माता यशोदा देखती है और बुलाती है बड़ा स्नेह से, कहती है पुत्रम, हे मेरे पुत्र अब आ जाओ तुम, क्या करने के लिए न वजन आबह, अब आकर के नहा धो लो, बहुत तुमने तुम्हारी खेल हो गई, बहुत ज्यादा खेल लिए है। और इससे पहले फिर बालकों को भी कहती है, या तो बालक ए बच्चे तुम सब अपने अपने घर जाओ, जितने भगवान के मित्र थे, मैया यशोदा कहती है तुम सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि भगवान अपने मित्र को छोड़ करके नहीं आ सकते, इसलिए वो कहते हैं तुम अपने अपने घर जाओ तब जाकर के कान्हा आएगा। तब ठाकुर जी वो कहते हैं मैया यशोदा अब चले आओ और आओ आकर के नहा धो लो, क्यों ना जन्म नक्षत्र ते अद्य भवति, आपके जन्म के समय जो नक्षत्र है वो नक्षत्र आज मिल रहा है, रोहिणी नक्षत्र आज मिल रहा है, इसीलिए तुम चले आओ और आकर के जल्दी से पवित्र हो जाओ, नहा धो लो, शुचि ही पवित्र हो करके क्या करना है, विप्रभो हो देही गाहा, ब्राह्मणों को अब गोदान करना है, चले आओ। बड़ा सुंदर भावों का वर्णन इस श्लोक में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं भगवान से माता यशोदा देखिए कैसी बातें कर रही है, यहां तक कि भगवान ने भी गोदान किया है। महाराज इस दशम स्कंद में आप कहीं भी जाएंगे, ठाकुर जी की किसी भी लीला में जाएंगे, किसी भी लीला के अंतर्गत चले जाएंगे, गो महिमा अवश्य प्रकट होता है। गो माता जानते हैं कौन है, गो माता भगवान के आराध्य देव है, दुनिया भगवान को पूजता है और हमारे गिरिधारी स्वयं गो माता को पूजते हैं, गो माता की पूजा ठाकुर जी करते हैं, इसलिए गो रक्षा हमारे हिंदुओं के द्वारा अवश्य होनी चाहिए। जब तक गो माता की रक्षा के लिए प्रबंध न हो जाए भारतवर्ष में तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता। कितना भी आप कुछ कर लीजिए, कितना भी बदल लो सरकार, कुछ नहीं हो सकता जब तक गो सुरक्षा न हो। गो माता चारों ओर से जब तक सुरक्षा न प्राप्त कर ले, गो सेवा बढ़िया से जब न होए, तब तक भारतवर्ष में सुख आ ही नहीं सकता। हमारे भारत भूमि में पहले जितने भी आध्यात्मिक कर्म होता था, आध्यात्मिक उत्सव मनाए जाते थे, उन समस्त उत्सवों में ऐसे वर्णन प्राप्त होता है ब्राह्मणों को गोदान की जाती थी। इसी भागवत के अंतर्गत बहुत से प्रसंग प्राप्त होता है, महाराज नृग उन्होंने भी गोदान किया, दशरथ महाराज उन्होंने भी गोदान किया, युधिष्ठिर महाराज उन्होंने भी गोदान किया, परीक्षित जी उन्होंने भी गोदान किया। स्कंद पुराण में कथा आती है जब राजा इंद्रदम्न महाराज जगन्नाथपुरी में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने भी गोदान किया, इतना गोदान किया गो के चरण से जहां गो माताएं सब खड़ी थी, उस गो के खुर से, खुर के प्रभाव से वहां पे एक इतना बड़ा तालाब बन गया जिसको आज इंद्रदम्न तालाब कहते जगन्नाथपुरी में है, वो गो के खुर से वो तालाब बना था, इतने गो माताएं वहां पर खड़ी थी और उन्होंने सब ब्राह्मण को दान दिया। गो सेवा का बहुत बड़ी महात्म्य है। क्या कहना है, यहां तक कहा जाता है कलिकाल में यदि कोई संत की सेवा और गोमाता की सेवा, इन दोनों की सेवा कर लेता है, ईश्वर की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि संत सेवा गो सेवा उन्होंने किया है, उसे भगवान स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यदि केवल भगवान के प्रति उन्होंने प्रीत उत्पन्न किया, संतों के प्रति और गोमाता के प्रति प्रीत उत्पन्न नहीं किया, सेवा भावना नहीं व्यक्त करी है, तो भगवान उसे कदापि नहीं प्राप्त होंगे। यह बात वर्णन प्राप्त होता है पुराणों में। गो माता भगवान के सेविया है, भगवान उन्हीं के वंदन करते हैं। इसी गो माता के कारण ठाकुर जी गो माताएं चरण में कोई खड़ाऊ नहीं पहनती थी, कोई जूते नहीं धारण करती थी। इसीलिए लाला को जब मैया ने कहा कि लाला तू कम से कम खड़ाऊ तो धारण कर ले, जूते तो पहन ले, गाय चराने जा रहे हो कम से कम जूता तो पहन ले, तो हमारे बाल कृष्ण लाल कहते नहीं मैया, मैं कैसे जूता पहन सकता हूँ, मैं कैसे खड़ा उदाहरण कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे गौ माताएं तो सब ऐसे नंगे पैर चल रही है, हम भी नंगे पैर जाएंगे। जहां मेरे गौ माताएं मेरे बछड़े नंगे पैर जाएंगे, तो हम भी उनके पीछे पीछे नंगे पैर जाएंगे। ठाकुर जी इतना प्रीत करते हैं गौ माता से, इसीलिए सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को, सभी मानव समाज में सभी को चाहिए कि वो गौ सेवा अवश्य करे, गो माता का पालन करे। आज इतना सौभाग्य नहीं है, लोग छोटे छोटे फ्लैट में रहते हैं, छोटे छोटे कोठियां में रहते हैं, जहां पे गो माता को बांधना नहीं हो पाता, परंतु भैंस तो रखना अवश्य होता है। लोग आज भैंस रखते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और गो माता के नाम पर लोग आज वर्ण शंकर को अपने घर पर रखते हैं। जो दर्शी कहते वो गो माता थोड़े ना, वो कोई गौ माता थोड़ी है, गौ माता का परिचय होता है, उसके गले पर ढाल होती है, उसकी सिंग होता है, उसके चूल होता है, लंबे पूंछ होते हैं, ये गौ माता का स्वरूप ही होता है, गौ माता का परिचय होता है। वो जो विदेशी प्रदेशी गायियां जो इंजेक्शन से उत्पन्न होते वो गौ माता नहीं है, वो वर्ण शंकर उसको कहते हैं। उनको पालन करने से, उनका सेवा करने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो एक एक बाल्टियां दूध देती है भारत के देसी गौ माता, ये तो बस एक आधा लीटर दूध दे दिया तो बहुत है। ऐसी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता के विषय में शास्त्र में बहुत वर्णन प्राप्त होता है। कहा जाता है सभी वैष्णवों को नित्य गव्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। जो पंचगव्य होता है, गव्य पदार्थों का नित्य सेवन करना चाहिए। कहां तक कहा जाए, यहां तक पुराणों में प्राप्त होता है, वर्णन मिलता है, यदि 48 घंटे के अंदर गोगव्य पदार्थ का कोई सेवन नहीं करता, उसके शरीर अशुद्ध हो जाता है और उसके देह में असुर का निवास होता है। इतना तक कहा गया है। 48 घंटे यदि व्यतीत हो गया, आपने दूध नहीं पिया, घी नहीं खाया, दही नहीं लिया, गोमूत्र गोबर इत्यादि सेवन नहीं किया, तो हमारी शरीर अपवित्र हो जाता है 48 घंटे व्यतीत होने पर, और उस देह में असुर का निवास होता है, भगवत भक्ति नहीं हो सकता। इतना तक कहा जाता है। जब गो माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास कर रहे थे, 33 करोड़ देवी देवता गो माता के अंग में जब निवास कर रहे थे, तो उस समय लक्ष्मी जी को बड़ा घमंड आई। पुराण की बात है, लक्ष्मी जी ने कही मैं तो नारायण की पत्नी हूं, और मैं क्यों इसके शरीर में जाकर के निवास करूं, सब हमारी चाहत रखते हैं, ये देवी देवता भी हमारी कृपा चाहते हैं, तो हम क्यों इस गो माता के शरीर में जाकर के निवास कर, हम नहीं निवास करते। तो ठाकुर जी ने कह दिया जो चाहे वो कोई भी हो, मेरे अंग भी कोई ना क्यों ना हो, यदि वो गो माता के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी ने ये कह दिया। तो लक्ष्मी जी घबरा गई, कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी हमारी परित्याग कर दे। तो लक्ष्मी जी ऐन में आई, एकदम आखिर मुहूर्त पर आई, गो माता से हाथ जोड़ती है, कहती है हे सुरभ्यई, हे गो माता, आप हमें कहीं भी आपके शरीर में निवास दे दीजिए। गो माता ने कहा कि अब हमारे शरीर में कहीं स्थान नहीं है, सब देवी देवता स्थान ले लिए, पहले आई होती तो तुम्हें हम मस्तक पर बिठा लेते, क्योंकि तुम हमारे श्याम सरकार के पत्नी हो, प्रिया जी हो, पहले आई होती तो हम तुम्हें अपने मस्तक पर धारण कर लेती, परंतु अब नहीं, परंतु लक्ष्मी जी को बड़ा भारी डर थी कहीं गोविंद हमारे परित्याग न कर दे, इसीलिए बहुत विनती करने के उपरांत गोमाता ने कृपा करते हुए कही कि अब हमारे पृष्ठ भाग जहाँ पे हम मल विसर्जन करते हैं वही जगह केवल बाकी है, यदि तुम रहना चाहते हो जहाँ मल विसर्जन करते उसी स्थान पर निवास करो। तो लक्ष्मी जी उस जहाँ पे मल विसर्जन करती है गोमाता उस गोबर में निवास करती है। कहे कि कोई बात नहीं, कम से कम यही तो रह जाऊं, कम से कम गोविंद से दूर ना हो, इतना महाराज गौ माता की महिमा है जिसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है, और क्या कहना है। तो हमारे ठाकुर जी को यहाँ पे कह रही है यशोदा रानी, जन्म नक्षत्र ते अद्य भवती विप्रभ्यो होते ही गाहा सुचि ही, अब आ जाओ स्नान करो, स्नान करके तुम्हारे जन्मोत्सव पर नक्षत्र मिल रहा है, इसीलिए तुम गोदान करो ब्राह्मणों को। गोदान का बहुत बड़ी महिमा है, गोदान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्र में बताया जाता है, यथाशक्ति हमें गोदान करनी चाहिए। दान का अर्थ क्या होता है, दान का तात्पर्य क्या है, दान किसे कहते हैं। जब हम किसी को कोई वस्तु दान में देते हैं, ध्यान से सुनिए, हम दान में देने के उपरांत तो उसी का चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमने उसे दिया, अब वो उस वस्तु को लेकर के क्या कर रहे हैं, चाहे वो तोड़ दे फोड़ दे या दूसरों को दे दे, इससे आपका कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए। परंतु आज व्यक्ति जब दान देता है तो यह कहकर के देता है, देखना भाई यह दान मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए प्रिय वस्तु प्रतिमा वह मेरे वस्तु है, आप तुम इसे बड़ा श्रद्धा से रखना, इसे किसी और को मत दियो, यह कह देते हैं, यह दान नहीं माना जाता। दान तो उसे कहते हैं देने के बाद जिसके विषय में कभी व्यक्ति स्वप्न में भी ना सोचे उसको दान कहते हैं। और गोदान का महिमा बहुत बड़ी प्रथा है शास्त्र में, जो गोदान करता है उस स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाता है, श्याम सुंदर के चरण में आश्रय प्राप्त होता है गोदान करते ही। तो यहाँ पे यशोदा रानी कहती है आ जाओ और नहा धो लो, पवित्र होकर के जल्दी से ब्राह्मण को गोदान करो। नंद महाराज ने खूब गौएं लुटाई है, बहुत से गोदान किए हैं कृष्ण के जन्म अवसर पर, भगवान के जब जन्म हुआ प्राकट्य हुआ तब ठाकुर जी ने बहुत गोदान की है, इतना गोदान की, इतनी गोदान किए क्या कहना है। गो और गज, गो के चरणों में चांदी का खुर पहना करके, चांदी के मुकुट पहना करके और सिंह पर स्वर्ण का मुकुट पहना करके, गो माता की पूंछ में रत्न का हीरे जवारे का माला धारण करा के बहुत से ऐसे गोओं को, करोड़ों करोड़ों गो माताओं को दान करी है नंद महाराज ने, बहुत से दान किया। और ब्राह्मण ने इतना दान लिए, यहाँ तक ऐसे ब्रज में कहावत है एक ब्राह्मण ने तो अपने रसोई घर में भी लेके गो माता मान दी, अपने निवास स्थान पर जहाँ बेडरूम में जहाँ सोता था ब्राह्मण, इतना गो माता नंद महाराज ने दान कर दिए, उन्होंने कहाँ बांधू गौशाला तो पूर्ण हो गया, जहाँ सोता था ब्राह्मण वहां दो चार गैया बांध दी, जहाँ वो भोजन बनाता था वहां पे भी दो चार गैया बांध दिया, इतना बड़ा उदार थे बाबा जी, इतने उदार गो और हस्ती का इतनी दान किए थे, इतनी बड़ी रानी थे ब्रज में, इतना कहते संत लोग। भगवान शिव ने सोचने लगे, भगवान शिव भी देख रहे थे नंद बाबा के उदार, भगवान शिव ने क्या किया, नंदेश्वर के पूछ पकड़ लिया, कहीं बाबा हमारे नंदी को गो माता समझ करके दान न दे दे, यही एकमात्र हमारी यात्रा का एक ही मात्र साधन है। भगवान शिव ने नंदेश्वर की पूछ पकड़ ली है और पार्वती ने गणेश जी को अपने अंक में ले ली कि कहीं गज समझ करके मेरे पुत्र को गजमुख गणेश को ये दान न कर दे। इंद्र ने ऐरावत की पूछ पकड़ लिया कि बाबा आज इतने उदार है कि कहीं ऐसा मेरे ऐरावत को हाथी समझ कर किसी को दान न दे दे, इतनी महिमा वर्णन किया जाता है। तो गो माता की सेवा बहुत उत्तम है शास्त्र में बताया जाता है, भगवान को प्राप्ति करने में ये सबसे बड़ा सरल सबसे सुगम उपाय है गोमाता की सेवा गोदान। यदि हम गो अपने घर में पालन नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ गौशालाएं हैं जहाँ गोमाता की सेवा होती है वहां पर जाकर के गोमाता की सेवा करके आ जाए। यदि हमारे पास ठाकुर जी की कृपा से धन धान्य है तो एक दो गाय के या यथाशक्ति जितने गौए की सेवा वो कर सकती है उतने गौए की जिम्मेवारी वो ले ले, उतना टंखा वहां पर टंखा से उनकी सेवा करे। यहां तक वर्णन प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से गोमाता की सेवा करना अत्यधिक आवश्यक है। महाराज लास्ट बात सुनिए, कहते हैं कि अगर जीवन में वो गोमाता की सेवा नहीं किया है, कितना बड़ा वैष्णव के रूप में क्यों न दिख रहा हो, यदि गो सेवा नहीं किया है भगवत प्राप्ति उसे नहीं हो सकता, इतना तक कहा गया है। और क्या कहें, भगवत प्राप्ति असंभव है यदि गो माता की सेवा नहीं किया है तो, और क्या कहा जाए बताइए। इतना तक विष्णु पुराण में वर्णन है। भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है गो माता की सेवा, संत सेवा, ये सबसे बड़ा सर्वोत्तम साधन है। क्या कहा जाता है तो यहाँ पे ठाकुर जी से माता कहती है कि चले आओ और आकर के गो माता की दान करो, गोदान करो, ब्राह्मणों को पवित्र होकर के नहा धो करके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर 18वें अध्याय के एक श्लोक को रखते हुए कहते हैं, तीन चीजें हमें जीवन में कभी भी परित्याग नहीं करनी चाहिए। तीन चीजें किसी भी अवस्था में, चाहे वो महाभागवत भी क्यों ना बन जाए, चाहे कितना भी उच्च कोटि के वैष्णव ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ क्यों न बन जाए, कहते हैं तीन चीजें उसे कदापि नहीं त्याग करनी चाहिए। क्या है? प्रथम है यज्ञ, दूसरा है दान, तीसरा है तप। ये तीनों चीज पावन ही न मनीषणाम हमें इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला है, श्याम सुंदर के चरणों में प्रीत कराने वाला है ये तीनों चीज। इसीलिए ये तीनों चीज को किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं परित्याग करना है, नहीं त्यागनी है, न तक वर्णन प्राप्त होता है। यज्ञ का तात्पर्य क्या है और ये तीनों चीज करता कौन है, कौन कर पाता है तीनों चीज? जो सरल स्वभाव की है, जो वैष्णव होते हैं, जिसका हृदय में सहानुभूति की भावना है, जिसके हृदय पवित्र है, तब वो तीनों कार्य व्यक्ति कर सकता है। हालांकि तीन कार्य सभी के लिए कहा जाता है, परंतु तीन कार्य करते कौन है? वैष्णव जन ही केवल कर पाते हैं, और कोई नहीं कर पाता इस तीन कार्य को। जिसके हृदय में उदार भावना है वही व्यक्ति कर सकता है। और ऐसे वैष्णव के लिए क्या कहा जाता है शास्त्र में, ऐसे संत के लिए क्या कहा गया है शास्त्र में? संत की महिमा के विषय में पुराण में वर्णन प्राप्त होता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थात् वसुंधरा पुण्यवती जतेन स्वर्गे स्थिताय पितरोपि धन्या मत्कुले वैष्णवनामधेयम्। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थात् वसुंधरा पुण्यवती जतेन। कहते हैं व्यास जी, कहते जिसके कुल में एक वैष्णव का जन्म होता है, एक वैष्णवी का आगमन हो जाता है, उस कुल का पवित्र हो जाता है। व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, संक्षिप्त में सुनिए। उस कुल का पावन हो जाता है, कुल का उद्धार हो जाता है जिस कुल में एक संत महात्माओं का जन्म होता है। महाराज कुलम पवित्रम जननी कृतार्थात्, और उस देवी को, उस माता को जननी, उस जननी का उदर भी पवित्र हो जाती है जिसके उदर में एक वैष्णव या एक वैष्णवी का आगमन होता है। जननी कृतार्थात् मां बनना उसकी धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती जतेन, धरती माता को बहुत पीड़ा हो रही है संसार के पापी पुरुषों के प्रभाव से, परंतु पृथ्वी माता भी बहुत प्रसन्नता होती है, कहती है कि इन समस्त पापी पुरुषों को मैं झेल लूंगी, एक वैष्णव का चरण हमारे मस्तक पर पड़ेगा, इसीलिए मैं उस वैष्णव के चरण को प्राप्त करने के लिए, चरण स्पर्श प्राप्त करने के लिए संसार के समस्त कष्ट को झेल सकती है। वसुंधरा पुण्यवती जतेन, स्वर्गे स्थिताये पितरो की धन्याः। कहते हैं स्वर्ग में उनके जो पितरगण रहते हैं वो पितर लोग नृत्य करने लगते हैं। क्या कहते हुए हैं? मत कुले वैष्णव नाम ध्येयम्। अब तो हमारे कुल में एक वैष्णव का आगमन हो गया, अब हमारे उधार निश्चित है। तो वैष्णव का गुण क्या होता है, महापुरुष का गुण क्या होता है? वैसे से वैष्णव होने से बहुत अच्छी बात है, परंतु चरित्र से भी वैष्णव होना अत्यधिक आवश्यक है, हृदय से वैराग्य होना अत्यधिक आवश्यक है। हृदय में यदि वैराग्य नहीं है तो ईमानदार से स्वीकार कीजिए, प्रिया प्रियतम के चरणों में प्रीत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वेश केवल वैराग्य बनाने से, पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किए थे, फायदा होगा, थोड़ा सा ही फायदा होगा, लोगों ने वैरागी समझ करके प्रणाम करेंगे, दान दे देंगे, घर पर बुला के भोजन करा देंगे, रुपया पैसा दे देंगे, परंतु आत्म कल्याण नहीं हो सकता। चरित्र से वैराग्य होना, हृदय से वैराग्य होना अत्यधिक आवश्यक है। तो यह तीन कार्य कौन कर पाता है? ऐसे वैष्णव ही केवल कर सकता है, यज्ञ दान तप। यज्ञ तो यज्ञ क्या है? यज्ञ तो यज्ञ स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु ही है। तो कलिकाल में यज्ञ क्या है? सभी हम बार बार संत लोग इस बात को दोहराते हैं, श्रवण करते हैं, कलिकाल में यज्ञ क्या है? कलिकाल में यज्ञ होता है केवल भगवान के नाम संकीर्तन यज्ञ, यजंती ही सुमे रसा संकीर्तन यज्ञ प्राय। कलियुग में केवल संकीर्तन यज्ञ ही प्राधान्य है, और जो बुद्धिमान होते हैं इसके अलावा दूसरा कोई यज्ञ करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। सुमेधसा गण जो होते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, वही लोग केवल कलिकाल में संकीर्तन यज्ञ करेंगे। सम्यक रूपेण कीर्तन, संकीर्तन किसको कहते हैं, कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन क्या होता है? कीर्तन वह होता है जब हम सम्यक रूपेण जाप करते हैं, जैसे हम जाप करते हैं अकेले अकेले, उसको कीर्तन कहते हैं। अकेले अकेले भगवान के नाम गुनगुनाते हैं, उसको कीर्तन कहते हैं। संकीर्तन किसको कहते हैं? संकीर्तन उसे कहते हैं सम्यक रूपेण, कई लोग बैठ करके जब कीर्तन किया जाता है, और जो ज्ञान होता है, जब विज्ञान में परिवर्तन होता है, जैसे ज्ञान विज्ञान होता है, दो बातें होती है, ज्ञान का अर्थ होता है जानना, विज्ञान का अर्थ होता है स्वरूपगत उतर जाना, अपने जीवन में पालन होना, उसे समझना, अपने स्वरूप में ले आना, उसको विज्ञान कहते हैं। ऐसे कीर्तन का अर्थ होता है जो मुखारविंद में हम नित्य जाप करते हैं। संकीर्तन का भाव महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में दिया है, बड़ा सुंदर भावों का वर्णन करते हुए महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा है संकीर्तन क्या होता है। तो संकीर्तन का अर्थ यह होता है, शरीर के रोंगटे जब खड़े होने लगेंगे और भगवान के नाम जब लेते ही आंखों से नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गदगद रुधिया गिरा पुलकई निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यते। यह संकीर्तन है, यह विज्ञान है। तो कलियुग में केवल एकमात्र यज्ञ होता है संकीर्तन यज्ञ, इसके अलावा दूसरा कोई यज्ञ हमारे कल्याण नहीं कर सकता। हम ये नहीं कहते कि कर नहीं सकता, कर सकता है। दूसरा यज्ञ के माध्यम से भी भगवत प्राप्ति संभव है, परंतु यदि वो विधिवत होए तब ना, परंतु विधिवत दूसरा कोई यज्ञ संपन्न करना असंभव है। ना पवित्र ब्राह्मण है, ना उन चंदन की काष्ठ उपलब्ध है, ना प्योर दूध दही का घी का प्राप्त होता है, ना किसी को उन वैदिक मंत्रों का उपचार पुरस्करण का कैसे गायन करते पता है, ना स्वर्ग से कोई ऐसे वस्तुओं को ला सकता है। इसलिए कलिकाल में अलग यज्ञों का ज्यादा इतना उनकी प्रशंसा नहीं की गई है जितना संकीर्तन यज्ञ के विषय में कहा गया है। केवल जाप किया जाए कलियुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगा, केवल जाप और गो सेवा, दो कार्य केवल करना है। भगवान को पाने के लिए कलियुग में केवल दो कार्य, ये कलियुग नहीं है, ये सत्य युग है महाराज। अलग युग में तो ठाकुर जी दयावान थे ही, परंतु कलियुग में ठाकुर जी कुछ विशेष दयावान है। नाभाजी ने अपने टीका में वर्णन करते हैं कलियुग में ठाकुर जी कितने, इसलिए संतों की महिमा को सुनकर के विस्मित नहीं होना चाहिए। इसी कलिकाल में नाम देवी जी को ठाकुर जी ने 56 बार दर्शन दिया, इसी कलिकाल में मीराबाई ने प्रत्यक्ष गिरधारी को दर्शन किया, गिरधारी के सेवा प्राप्त किए, इसी कलिकाल में सकुबाई आपके इसी महाराष्ट्र के हैं, इनके बदले में हमारे गिरधारी जी स्वयं बंध गए, इसी कलिकाल में संत तुकाराम जी ने पग पग पर भगवान का प्राप्ति किया, कहां तक कहा जाए, इसी कलिकार में धना जाट के गैया हमारे ठाकुर जी ने स्वयं तराई, और इसी कलिकाल में नरसिंह महता जी ने, नरसिंह जी ने जो गुजरात में प्राकृत्य जी ने कहा हुआ, नरसिंह जी को भी 56 बार ठाकुर जी के साक्षात्कार हुआ, इस कलिकाल में ही हुआ है। इसीलिए ये कलिकाल नहीं है, कलियुग नहीं है, ये तो उनके लिए सत्ययुग ही है, जो भजन करते उनके लिए सत्ययुग है, जो भजन नहीं करते महाराज सत्ययुग ही उनके लिए कलिकाल ही है। क्या कहना, कलियुग में विशेष उदार है भगवान, बहुत करुणावान है। केवल दो चीजें किया जाए, गो गव्य पदार्थ का सेवन किया जाए, गो माता की सेवा किया जाए, बाकी बचे समय में भगवान नाम का संकीर्तन होए, बस दो चीजें होए कलियुग में भगवत प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे माता यशोदा बुला करके ठाकुर जी को ले जाती है और नंद बाबा के साथ भोजन के लिए बिठा देती है। यह झांकी का तो वर्णन हमने नहीं सुनाया, संक्षिप्त में सुन लीजिए, 5 मिनट में संक्षिप्त में सुन लीजिए कि कैसा है। जो विलोमंगल ठाकुर जी ने, श्लोक नहीं कहूंगा केवल अर्थ अर्थ सुना देता हूँ, कृष्ण करामृत नामक ग्रंथ में कैसे वर्णन करते हैं। मैया यशोदा बाल कृष्ण लाल को बुला करके, जिसे यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है, ले जाती है घर पर और बाबा के पास नहला धुला करके बिठा देती है। एक तरफ दाऊ जी और एक तरफ लालाजी बैठे हुए हैं, बाबा बीच में बैठे हुए हैं। सुंदर सा थाली पे, रत्न के थाली पर भोजन परोसा गया है। बाबा जी बैठे हुए हैं और दाऊ जी लालाजी दोनों तरफ बैठे हुए हैं। और भगवान ने ये कहा कि मैया देख, हम अकेले भोजन नहीं ग्रहण करेंगे जब तक हमारे बाल सखाओं को तुम न जिमाओगे। तो माता यशोदा ने कहा कि कोई बात नहीं, समस्त सबरी सखाओं को ले आओ। तो समस्त सखाएं भी आ गए, ये सब नंद बाबा के घर पर शौच कार्य इत्यादि किए और पवित्र होकर के सब भोजन के लिए लाइन से बैठे हुए हैं नंद महाराज के प्रांगण में। बालकृष्ण लाल और दाऊ जी ये दोनों नंद बाबा के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं और माता यशोदा खीर की कटोरी मधुमंगल को नहीं देते, क्योंकि यशोदा माता ग्वालिनी है और मधुमंगल ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ग्वाला की वहां खीर वीर नहीं ग्रहण करना चाहिए विधि के अनुसार। तो औदार्य के कारण माता यशोदा खीर की कटोरी नहीं रखती मधुमंगल के पास, और मधुमंगल का तो नजर बिल्कुल खीर में ही है महाराज, कि खीर हमको क्यों नहीं दी माता ने। भोजन ग्रहण करते समय सबके सब आनंद ले रहे थे भोजन का, और उसी समय मधुमंगल ने भोजन नहीं ग्रहण किया। मधुमंगल चुपचाप बैठा रहा, सब भोजन पा रहे थे। माता यशोदा पूछती है कि मधुमंगल काय हो गए, अरे तू कहे क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, क्यों नहीं भोजन ग्रहण कर रहे हो। उन्होंने कहा मुझे कोई मुहूर्त दिखाई दे रहा है, बहुत अशुभ होने वाला है। अरे राम राम, क्या बात है, क्या शुभ होने वाला है। मधुमंगल ने कहा अभी छात गिरने वाला है यहाँ पे। और इतना जब सुना यशोदा रानी, कहा कि ये इतना शुभ अवसर पर ब्राह्मण के वाला, कम से कम शुभ शुभ तो बोल लिया करो, इतना शुभ अवसर मेरे लाला के जन्मदिन है और कहते छत गिरने वाला है। उसने कहा कि हाँ छत गिरने वाला है। तो माता यशोदा कहती जब छत गिरेगा तो काहे से बच जाओगे, तुम भी तो छत के नीचे बैठे हो, तुम भी दब जाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बच जाएगा ना, कैसे, जैसे हमसे खीर बच गए हो। उन्होंने कहा जैसे हमसे खीर बच गए हो ऐसे मैं बच जाऊंगा। अरे उन्होंने कहा अरे मधुमंगल, तुम्हें ब्राह्मण समझ करके खीर नहीं दिया, तुम्हें खाना है तो खाओ, तो खीर दिया। तो वो पाने लगे तो ठाकुर जी और दाऊ जी दोनों ही बाबा के थाली से गच्चे लेकर के पा रहे थे। बाबा को हरी मिर्ची बहुत प्रिय थी, बाबा एक हरी मिर्ची लेकर के उस थाली के अंदर बीच में गाड़ कर रखते थे और एक गच्चा लेने के बाद में एक टुकड़ा हरी मिर्ची पा लेते थे, फिर से उस चावल के बीच में उस हरी मिर्ची को डाल देते थे, कहीं कन्हैया ना देख ले, लाला ना देख ले। महाराज लाला के नजर पड़ने से पहले दाऊ जी की नजर पड़ गया सुहरी मिर्ची पर। दाऊ जी ने आंखें से इशारा करके कन्हैया से कह दिया, बिलोमंगल जी झांकी में वर्णन करते, कहते कन्हैया देख बाबा कोई स्वादिष्ट वस्तु छिपा करके रखे जो हमको नहीं दे रहे, अब तुम देख ले इसे जैसे भी करके हड़प ले। तो कन्हैया ने क्या किए, ठाकुर जी ने कहा कि बस दाऊ जी थोड़े से बस कान से आने दो, हाथ में आने दो बस। तो बाबा जैसे कि गच्छा लेते उसी बीच में कन्हैया ने क्या करते, उस हरी मिर्च को कोई अच्छी वस्तु मीठी स्वादिष्ट पदार्थ समझ करके, छोटे से लाल कृष्ण लाल है अज्ञात है, तो भगवान ने उस हरी मिर्च को लेकर के झप से खा लेते हैं। जैसे खा लेते वो तो हा हा करके बस नृत्य करने लगे, चिखने लगे। अरे यशोदा रानी रसोई गृह से दौड़ आई, क्या हो गया क्या हो गया, लाला को पानी पानी पिलाई, दूध वूध पिलाई और फिर लाला को बिठाए भोजन के लिए। अब नंद बाबा के नेत्र भर आए, नंद बाबा ने यशोदा रानी को डांटते हुए कहते, यशोदा रानी मैंने तुमको कब कितने बार कहा कि जब लाला हमारे साथ भोजन के लिए बैठता है, दाऊ जी जब बैठते हैं तब हमें हरी मिर्च मत दिया करो, आज के बाद मत देना हरी मिर्ची, देख लाला को क्या हो गया। नंद बाबा उस दिन से हरी मिर्ची खाना छोड़ देते हैं कन्हैया के लिए, ठाकुर जी के लिए, बालकृष्ण लाल के लिए। तो आते ठाकुर जी फिर दोबारा भोजन ग्रहण करते हैं और नंद बाबा के पेट भर जाता है, कन्हैया जी अन्न को और दाल को लगा करके पिचक पिचक जैसे बच्चे बैठते हैं तो भोजन कहाँ करते हैं, वो आधा तो इधर उधर बिखार देते थे थाली के चारों ओर। तो ऐसे ठाकुर जी चारों ओर भोजन को बिखार करके बैठे रहते हैं और नंद बाबा एक गच्चा अपने मुंह पर लेते तो चार गच्चे कृष्ण के मुंह पर देते हैं, दाऊ जी के मुंह पर देते हैं कि तुम इसे पालो जल्दी से। और वैसे छोटे छोटे हाथों में बालकृष्ण लाल जी नंद बाबा को भी खिलाते कि बाबा आप भी खाओ, क्या सौभाग्य होगा नंद बाबा के, ठाकुर जी जब उन्हें स्वयं प्रसाद पवा रहे थे तो उनकी मुखारविंद पर देते नंद बाबा को, नंद बाबा उसे पाते हैं। नंद बाबा कहते अब बस कन्हैया मेरा पेट भर गए रे, अब नहीं खा सकता। तब कन्हैया कहते बाबा अभी भी तुम्हारे पेट भरा नहीं है, खाली है। तो नंद बाबा के पेट दबा करके कन्हैया देखते हैं, हाथ लगा करके कहते बाबा अभी भी तो पेट में ज्यादा खाली है। पेट दबाते दबाते उनके नंद बाबा की जो नाभि है सुंडी पर उनकी उंगली चली जाती है। अब भगवान कहते बाबा अब तो नेक्सा जगह बाकी है, अभी तो थोड़ी सी जगह बाकी है, कहाँ पेट भर गया है, तो थोड़ा सा दाल और चावल लेकर के सुंडी में भर देते हैं। भर करके कहते बाबा हाँ अब पेट भर गया। और नंद बाबा खूब जोर का हंसते हैं, अब उठ जाते कहते कन्हैया क्या कर रहे हो रे, तू क्या कर रहा है कन्हैया तू ये सब। यशोदा रानी कहती मैंने तुमको कब कितने बार कहा कि दोनों आने से पहले भोजन कर लो, परंतु वह तुम्हें तो इनके बिना भोजन जाता ही नहीं है। नंद बाबा कहते इस श्लोक के अनुसार कहते यशोदा रानी तुम ठीक कह रहे हो, इनके बिना हमारे भोजन नहीं जा रहा है। यह बालकृष्ण लाल की बड़ा सुंदर मनोरम लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में, और भावों का व्यक्त होता है इन श्लोकों में। दास को इतना अनुभव नहीं है, इनके बाद इनको विराम करते हैं। और भी कुछ बातें थी जो हमने मन में स्मरण, तो बहुत से बातें आ रही है इन बालकृष्ण लाल के अलग अलग लीलाओं का स्मरण इसी अध्याय के अंतर्गत। समय भाव के कारण नित्य क्रम के अनुसार विधि का उल्लंघन ज्यादा नहीं करना चाहिए, यही देवानी को विनाम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।